أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الزين العابدين عليه السلام يا من رحمه من لا يرحمهم الله ناظرین محترم آپ سب کو نور البلاغ ٹی وی پر خوش آمدید کہتے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ عید الفطر مسلمانوں کی بڑی عیدوں میں سے ایک عید ہے اور یہ ایک ایسا دن ہے کہ جس دن نیک اور صالح لوگوں کو اجر و ثواب ملتا ہے جبکہ بعض لوگ اسی خوشی کے دن ناامید اور مایوس نظر آتے ہیں اور ائمہ طاہر علیہ السلام کی روایات کی طرف جب ہم نظر دوڑاتے ہیں تو وہاں پر عید الفطر کے دن کو یوم الحسرت یا یوم القیامت سے تشبیہ دی گئی ہے اور شاید یہ تشبیہ اسی نیک لوگوں کو اجر و ثواب ملنے اور بعض کی ناامیدی کو مد نظر دیکھتے ہوئے یہ تشبیہ دی گئی ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ عید الفطر ہمیں منانی چاہیے کہ نہیں منانی چاہیے، اور اگر منانی چاہیے تو کس طرح منانی چاہیے؟ کیا ائمہ طاہر علیہ السلام نے عید کے منانے کے اعتبار سے تعلیمات دی ہیں کہ نہیں دی ہیں؟ انہی سوالوں کے تناظر میں آج کی ہماری گفتگو کا موضوع عید الفطر کی اہمیت اور فضیلت پر مبنی ہے، جس کی وضاحت کے لیے قم المقدس کے معروف عالم دین حجت الاسلام والمسلمین سید زائر عباس کو دعوت دی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
آپ کے نہایت ہی ممنون اور مشکور ہیں کہ آپ نے اپنی قیمتی وقت میں سے کچھ وقت ہماری اصلاح کے لیے نکالا۔ ہم اپنی گفتگو کا آغاز اس سوال سے کرنا چاہیں گے کہ جیسا کہ آخر ماہ رمضان مبارک ہے اور یہ ایک شبہ بھی عرفاً بیان کیا جا رہا ہے کہ کیونکہ یہ آخر ماہ رمضان المبارک دسواں امیر المومنین ہے تو کیا عید کرنی چاہیے، عید منانی چاہیے کہ نہیں منانی چاہیے؟ یہ بعض شبہات ہمارے ملک میں بھی ہیں، تو یہ واضح کریں کہ منانی چاہیے عید کے نہیں منانی چاہیے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رمضان جو ہے وہ تقریباً آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اب ختم ہو چکا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ جب یہ روزے ختم ہو جاتے ہیں تو خداوند متعال نے مسلمانوں کے لیے یکم شوال کو روزے عید قرار دیا ہے، اور عید کے دن کو سرور اور خوشی کا دن قرار دیا ہے، اور یہ صدر اسلام سے یہ جو مناسبت ہے وہ چلی آ رہی ہے جب سے ماہ رمضان میں روزے واجب ہوئے اور یکم شوال کو عید قرار دیا گیا، پیغمبر ہی کے دور سے یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور ہم جس زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں یہاں تک یہ تمام مسلمین و مومنین اس دن کو مناتے ہیں اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ بعض اوقات جاہل افراد وجود میں آ جاتے ہیں، دشمن چونکہ مختلف حربے استعمال کرتا ہے مذہب اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے، اور اس نقصان پہنچانے میں جو طبقہ سب سے زیادہ دشمن کے لیے کارآمد ہوتا ہے، ان کے فائدے میں کام کرتا ہے، وہ جاہل طبقہ ہے کہ علمی طور پر شعور ان کا بلند نہیں ہوتا، دین سے آگاہی نہیں ہوتی، آئمہ علیہ السلام کی روایات سے انس نہیں رکھتے۔ دشمن چھوٹا سا شبہہ اور اعتراض جو ہے وہ پیدا کرتا ہے اور یہ جاہل طبقہ جو ہے اس کے اندر ملوث ہو جاتا ہے اور اس کی زبان بن جاتا ہے اور اس کا دماغ بن جاتا ہے، اور پھر معاشرے میں ایک جو ہے وہ تفرقہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اس زمانے میں اس قسم کا ایک جاہل طبقہ پیدا ہوا کہ جو قائل ہوا کہ عید الفطر جو ہے وہ نہیں منانی چاہیے چونکہ امام علی علیہ السلام کا دسواں بنتا ہے۔ تو اس کا جواب یہی ہے کہ اگر عید الفطر نہیں منانی چاہیے تو پھر ان لوگوں سے بہتر جو ہے ہمیں ہدایات آئمہ علیہ السلام کی طرف سے آنی چاہیے تھی، چونکہ دین تو ہم آئمہ علیہ السلام سے لیتے ہیں، وہ نمونہ عمل ہے ہمارے، پیغمبر کے بعد جن سے ہم نے دین لیا ہے وہ آئمہ علیہ السلام ہیں، تو ہم آئمہ علیہ السلام کی طرف دیکھیں گے کہ آیا انہوں نے ये कहा है अपने कलाम के अंदर या अपनी सीरत में इस बात पर अमल किया है उन्होंने कि ईद उल फितर का दिन हो और अपने शीयों को मोमिनीन को मना किया हो कि आप इस दिन को ना मनाएं चूँकि हमारे जद का या हमारे वालिद का जो है यहाँ पर दसवां है, तो आप करें यानी। लेकिन जब हम रिवायात की तरफ रुजू करते हैं हमें इस किस्म की कोई बात नहीं मिलती, बल्कि उल्ट मिलता है। आयमा अलैहिस्सलाम की सीरत में भी, आयमा अलैहिस्सलाम के कलाम में भी कि बड़ी तशवीक कर रहे हैं कि ईद उल फितर के दिन को मनाया जाए। मसलन आप अगर पैगंबर अकरम की रिवायात की तरफ जाते हैं तो पैगंबर अकरम इस तरीके से इरशाद फरमाते हैं, फ़ाइज़ा कानत लैलतुल फितर हिया तुसम्मा लैलतुल जवाइज़, कि जब शब ईद उल फितर हो और इसको क्या नाम दिया गया है, शब जवाइज़ यानी इनाम की शब, इनाम दिए जाएंगे इसके अंदर। तो फ़ाइज़ा कानत लैलतुल फितर जब शब ईद आती है, अअतल्लाहु अल आलमीना अजरहुम बग़ैर हिसाब, तो खुदावंद मुताल जो है वो पूरे आलम को क्या करता है, उनका अजर देता है और उसमें कोई हिसाब किताब नहीं होता। देखें अब ईद को इस तरीके से बयान कर रहे हैं आकर। या मसलन इमाम अली अलैहिस्सलाम जो है इस तरीके इस जुमले में तो बिल्कुल सराहत है। क्या है, इमाम फरमाते हैं कि अला व इन हाज़ल यौम यौमुन जअलहुल्लाहु लकुम ईदा, कि जान लो, अला का लफ्ज़ आया है खबरदार, यानी जान लो कि ये जो दिन है खुदावंद मुताल ने तुम्हारे लिए इसको ईद करार दिया है। और आगे रिवायत के जुमले हैं कि बस इस दिन जो है खुदा की याद में रहो, उसका जिक्र करो और इबादत करो मसलन आकर। और ये इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमा रहे, खुद इमाम अली के जिनके दसवें की खातिर ये फितना और तफरका इजाद कर रहे हैं जाहिल तबका, यही इमाम अली अपनी ज़िंदगी के अंदर मोमिनीन को कह रहे हैं कि ये ईद का दिन है, इसको जिस तरीके से मनाना चाहिए उस तरीके से मनाएं इसको आकर। तो हमारे तशय्यो का अकीदा ये है कि इमाम मासूम जो है वो इल्म गैब रखता है, और इमाम अली अलैहिस्सलाम ये जानते हैं कि मैंने जो है वो ईद से पहले शहीद होना है। अगर ये गम का दिन करार देना था तो इमाम अली इस किस्म की कोई हदीस बयान ही ना करते, लेकिन हम देखते हैं कि इमाम जो है वो इसमें जो है वो तशवीक कर रहे हैं। या इमाम सादिक अलैहिस्सलाम, जैसा कि हम कुनूत में पढ़ते भी हैं दुआ जो नमाज ईद के अंदर है, ये इमाम सादिक अलैहिस्सलाम की दुआ है। उसमें इमाम अलैहिस्सलाम जो है वो इस तरीके से बयान करते हैं कि अस्अलुका फी हाज़ल यौम अल्लज़ी जअलतहु लिलमुस्लिमीन ईदा, कि मैं इस दिन में तुझसे सवाल करता हूँ, ये दिन क्या है कि जिसको तूने मुस्लिमीन के लिए ईद करार दिया है। और फिर क्या, वाले मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिही ज़ुख्रन व शरफन व करामतन व मजीदा, इस दिन में क्या है पैगंबर के लिए और आले मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिही वसल्लम के लिए शरफ करार दिया, करामत करार दिया है इसमें, इनके मकामात की बुलंदी का दिन जो है वो करार दिया है इसमें ईद उल फितर को जो है वो। मसलन ये ताबीरें जो हैं वो बता रही हैं कि आइमा अलैहिस्सलाम जो हैं इस ईद को ईद का दिन शुमार करते हैं, और ये इमाम सादिक अलैहिस्सलाम की जो है वो रिवायत है। इसी तरीके से हम आते हैं इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम, वो सैफ़ सज्जादिया की 45 नंबर दुआ के अंदर उसका तकरीबन 52 फराज जो बनता है, जुमला जो बनता है वो 52 नंबर बनता है, उसमें इस तरीके से बयान कर रहे हैं कि अल्लाहुम्मा नतूबो इलैका फी यौम फितरना, कि ऐ परवरदिगार हम तेरी तरफ जो हम वो रुजू करते हैं अपने इस यौम फितर में, कि क्या है ये यौम फितर, अल्लज़ी जअलतहु लिलमोमिनीना ईदन व सरूरा, कि इस दिन को तूने मोमिनीन के लिए ईद और सुरूर और ख़ुशी का दिन करार दिया है। अब देखें इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के जो करबला जैसे मुसीबत भी गुजार चुके हैं, इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम इस दुआ में इस जुमले के अंदर اس عید کے دن کو سرور کا دن قرار دے رہے ہیں کہ اے پروردگار تو نے اس دن کو عید کا دن قرار دیا ہے اور خوشی کا دن قرار دیا ہے۔ اب امام سجاد علیہ السلام کربلا کی مصیبتیں بھی جھیل چکے ہیں اور امام علی علیہ السلام کی مصیبت بھی جانتے ہیں، لیکن پھر بھی جو ہے مومنین کو تعلیم دے رہے ہیں کہ یہ جو یکم شوال ہے، عید الفطر ہے، یہ عید ہے، خوشی کا دن ہے۔ اور آئمہ علیہ السلام نے جو ہے وہ بڑی صراحت کے ساتھ یہ کہا ہے کہ خوشی کے دن خوشی مناؤ اور غمی کے دن غمی مناؤ۔ تو اب ہمیں ان روایات کی روشنی میں یہ بات واضح طور پر معلوم ہو رہی ہے کہ آئمہ علیہ السلام جو ہے وہ عید کے دن کو عید کا دن سمجھتے تھے اور تشویق کرتے تھے کہ اس کو عید ہی سمجھ کر جو ہے وہ منایا جائے اور سرور اور خوشی کا دن ہے اس میں آ کر۔ ایک مطلب جو میں اشارہ کر دیتا ہوں وہ یہ کہ معمولاً اس قسم کا جب سوال اٹھتا ہے، بعض افراد جو ہیں وہ جو آپ یوں کہہ لیں کہ دشمن کے پروپیگنڈے میں تو نہیں ہے، لیکن اس قسم کا جب فتنہ اٹھا تو ان کے ذہن میں یہ سوال اٹھا کہ ہاں ظاہری بات ہے عید کے دن ہلا گلا ہوتا ہے اور جو ہے وہ کہہ کے اور پتہ نہیں کیا کیا محفلیں لگتی ہیں جمتی ہیں، وہ زیب نہیں دیتا۔ تو ہم چونکہ امام علیہ السلام جو ہیں وہ ابھی تازہ شہید ہوئے ہیں، ہاں غم تازہ ہے مومنین کا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے ذہن میں جو عید کا تصور ہے عرف کے اندر وہ یہی ہے کہ جس کے اندر جو ہے وہ احکام الہی پامال کر دیے جاتے ہیں، لہو لعب کی جو ہے وہ نشستیں برگزار کر دی جاتی ہیں، ایسی گفتگو کی جاتی ہے جس پہ خدا اور شریعت جو ہے وہ راضی نہیں ہے، تو یہ تو ہر حالت میں حرام ہے۔ عید منانے کا طریقہ ویسا ہی ہونا چاہیے جیسا خدا چاہتا ہے، جیسا شریعت نے حکم دیا ہے، اگر اس طرح منانے میں کسی کو کوئی مشکل نہیں ہے، یعنی نئے کپڑے پہنے، اجتماع میں حاضر ہو، نماز اجتماعی طور پر پڑھے، مومنین سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملے، اس جو ماہ رمضان کی مبارک دن ہیں اور اس سے جو برکتیں مومنین نے حاصل کی ہیں ان کے حصول پر ایک دوسرے کو مبارکباد دیں، یہ والے طریقہ ہے جس کو منانا ہے اور اس کے اندر کوئی مشکل بھی نہیں ہے۔
اچھا، جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ اکثر آئمہ طاہر علیہ السلام نے اس عید کو مسرور دن کہا ہے مومنین کے لیے، اور یہ بھی فرمایا کہ اس طرح عید منانی چاہیے جس طرح آئمہ طاہر اور خدا چاہتا ہے، تو سوال یہ ہے کہ آئمہ طاہر علیہ السلام اور خود پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح تعلیم دی ہے کہ کس طرح عید منانی چاہیے؟
جی، انتہائی اہم سوال ہے، اگر وقت کے دامن میں گنجائش ہوتی تو تمام آئمہ نے جس طریقے سے ہدایات فرمائی ہیں ان کو یہاں بیان کیا جاتا، لیکن چونکہ وقت کم ہے میں چاہوں گا کہ فقط امام سجاد علیہ السلام نے کس طریقے سے عید منانے کا کہا ہے اس کے اوپر جو ہے وہ بیان کیا جائے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، مومنین بھی جانتے ہیں کما بیش، کہ امام علیہ السلام کی ہدایات کا جو مجموعہ ہے اس کو صحیفہ سجادیہ کہتے ہیں یا اس کو صحیفہ کاملہ بھی کہتے ہیں، کہ امام علیہ السلام کی دعاؤں کا مجموعہ ہے۔ امام سجاد علیہ السلام نے اپنے زمانے کی اس حالات اور شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ طے کیا تھا کہ مومنین اور مسلمین کی جو ہدایت ہے وہ دعاؤں کی شکل میں کی جائے، تو یہ دعائیں پھر بعد میں جمع کی گئی اور آج ہمارے ہاتھ میں وہ موجود ہیں۔ ہم جب دیکھتے ہیں صحیفہ سجادیہ کی طرف تو ہمیں اپنی پوری زندگی کے اندر اس میں ہدایات ملتی ہیں، یعنی آپ زندگی کا کوئی شعبہ نہیں دیکھیں گے کہ جہاں ہمیں ہدایت کی ضرورت ہو اور صحیفہ کاملہ کے اندر دعاؤں کی شکل میں ہمارے پاس ہدایت موجود نہ ہو، نہ پورا ایک مجموعہ ہے یہ، اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کتاب زندگی ہے، یعنی اس کے اندر سب کے زندگی، لائف سٹائل ایک مومن کا کیسا ہونا چاہیے، اس صحیفہ سجادیہ میں وہ پورا لائف سٹائل جو ہے وہ طرز زندگی کو بیان کیا گیا ہے۔ مثلا آپ دیکھیں، بارش ہو تو کیسے دعا کرنی چاہیے، والدین کے لیے کیسے دعا کرنی چاہیے، और मसलन फ़लाना अगर वाक़ा हो जाए तो कैसे दुआ करनी चाहिए, मसलन तमाम चीज़ें जो हैं वो इसके अंदर बयान की गई हैं। जब हम ईदुल फितर की दुआ की तरफ आते हैं तो हमें ये चीज़ मिलती है कि इमाम अलैहिस्सलाम ने एक पूरी दुआ जो है वो तालीम फरमाई है कि जिसके अंदर बहुत सारे मआरिफ जो हैं वो बयान किए हैं, जिसकी तरफ तवज्जो करना ज़रूरी है। हम अगर सैफ़ सज्जादिया की दुआ जो 46 है, 46 नंबर दुआ है, वो ईदुल फितर की और नमाज़े जुमा के बाद, यानी ये दुआ जो है कब तालीम फरमाई के नमाज़े ईद से जब आप फारिग हो जाएं या नमाज़े जुमा से जब फारिग हो जाएं, जब पलटने लगें तो इस दुआ को जो है वो पढ़ा जाए। तो नमाज़े ईदुल फितर जो पढ़ते हैं वो हतमन, ये छोटी सी दुआ ज़्यादा बड़ी नहीं है, मोमिनीन हतमन इस दुआ को जो है वो उर्दू तर्जमे के साथ पढ़ें तो बहुत सारे मआरिफ जो हैं वो मिलेंगे। इस दुआ के अंदर बहुत सारे मतालिब बयान हुए हैं, मसलन रहमत परवरदिगार का तज़करा हुआ, इसके अंदर खुदा से ना उम्मीद ना होने के बारे में जो है वो हिदायत दी गई है, और ये बयान किया गया है कि तमाम मौजूदात जो हैं खुदा के मुकाबले में कुछ भी नहीं हैं, यानी सिफर हैं, हीच हैं। इसकी तरफ तवज्जो दिलाई गई है, बेपनाह इंसान जो है वो खुदा की बारगाह में आए और पनाह हासिल करे खुदा की बारगाह में, खुदा उसको कबूल करता है। एक और अहम नुक्ता के जो इस दुआ के अंदर बयान हुआ है वो ये है कि हम जो आमाल अंजाम देते हैं वो आमाल इतनी कदर व कीमत नहीं रखते, लेकिन खुदावंद मुताल इस कम कीमत आमाल की बड़ी जजा देता है। यानी हमारी तरफ से जो अमल अंजाम पाया गया है उसकी कोई इतनी कीमत नहीं है, क्योंकि हमने उसमें हुजूर कल्ब उतना ज़्यादा नहीं रखा, उसकी शरायत जिस तरीके से होनी चाहिए वैसे उसको नहीं शरायत बनाई, लेकिन फिर भी जो है खुदावंद मुताल उस कम कीमत वाले आमाल को कबूल करता है और उसके बदले में जो है वो जज़ा बहुत ज़्यादा देता है। इसी तरीके से एक और नुक्ता जो इस दुआ के अंदर बयान हुआ है वो ये कि खुदावंद मुताल अज़ाब में जल्दी नहीं करता, और क्योंकि बाज़ुकात जैसा कि आपने भी इशारा किया कि मोमिनीन मायूस होते हैं बाज़ुकात, तो जब अज़ाब की आयात और रिवायात को पढ़ते हैं तो एक मायूसी इंसान में पैदा हो जाती है कि मैंने इतनी गुनाह कर दिए, इतनी नाफरमानियाँ कर दी, अब तो खुदावंद मुताल मुझे अज़ाब दे ही देगा, लेकिन खुदावंद मुताल जो है वो अज़ाब देने में जल्दी नहीं करता। इमाम अलैहिस्सलाम ने अपनी इस दुआ के अंदर बड़ी खूबसूरती से इस मतालिब इस मारिफत को जो है वो बयान किया है। मोहताजों का इकराम करने के बारे में मतलब इसमें मौजूद है, खुदावंद मुताल की हाकमियत पूरे जहान पर है, कोई भी ज़र्रा या कोई भी नुक्ता इस आलम का खुदा की हाकमियत से खाली नहीं है, और इस तरह से बहुत सारे और भी मतालिब हैं कि वक्त चूँकि कम है गुंजाइश नहीं है, मैं फ़कत तबर्रुक के तौर पर शुरू के चंद जुमले आपकी खिदमत में बयान करता हूँ उर्दू तर्जमे के साथ। इमाम फरमाते हैं कि ऐ वो जो ऐसे शख्स पर रहम करता है जिस पर बंदे रहम नहीं करते, यानी आप देखें बहुत सारे ऐसे अफराद हैं कि जिन पर मुआशरा जो है वो रहम नहीं करता है, उनके उनकी तरफ तवज्जो नहीं कर रहा होता, लेकिन उनकी पनाहगाह फिर भी खुदा है, खुदा फिर भी उनके ऊपर जो है वो रहम कर देता है। ऐ वो जो ऐसे गुनाहगार को कबूल करता है जिसे कोई क़िता ज़मीन उसके गुनाहों के बाइस कबूल नहीं करता, यानी अगर उसके गुनाह आश्कार हो जाएं कोई भी मुआशरा उसको कबूल नहीं करेगा, लेकिन खुदावंद मुताल इतना मेहरबान है कि खुदा के महजर में इंसान गुनाह करता है, ऐसा गुनाह के जो मुआशरा कबूल जिसको नहीं करता, खुदा फिर भी उसको कबूल कर लेता है। इसी तरीके से फरमाते हैं कि ऐ वो जो अपने हाजत मंद को हकीर नहीं समझता, क्या खूबसूरत जुमला है, यानी आप ऐसे मोहताज हैं, हम सरापा एहतियाज हैं खुदा के मुकाबले में, जो कुछ भी है खुदा का है, और खुदा कभी अपने इस मोहताज बंदे को हकीर नहीं समझता। जैसे ही खुदा की बारगाह में आता है अगर हिकमत का तकाजा हो, खुदावंद मुताल उसकी तमाम वो दुआएं वो आरजुएं पूरी कर देता है आकर। इस किस्म के बहुत सारे जुमले हैं कि मोमिनीन इंशाल्लाह खुद इसको जो है वो मुताला करेंगे।
अच्छा, आखिरी सवाल, जो कि हमारा वक्त बहुत कम है और ये एक ऐसा मौजू है जिसमें एक टॉक शो बहुत कम है, लेकिन आखिरी सवाल के जब हम देखते हैं कि ईदुल फितर में जो नमाज़ पढ़ी जाती है उसमें दुआ कुनूत वगैरह पढ़ी जाती है, तो इस दुआ कुनूत में क्या मारिफ बयान किए गए हैं आए माता अलैहिस्सलाम की तरफ से?
जी हाँ, वो दुआ बहुत मरूफ़ है और हर जगह यही दुआए कुनूत जो है वो पढ़ी जाती है, और इसके बाद जुमलात जो हैं वो इमाम सादिक़ अलैहि सलाम से भी मनकूल हैं। और यूँ दुआ शुरू होती है कि अल्लाहुम्मा अहलल किबरिया वल अज़मा व अहलल जूद वल जबरूत व अहलल अफ़ वल रहमा व अहलल तक़वा वल मग़फ़िरा, और ये सिलसिला इसी तरह आगे चलता है। इस दुआ में मुख्तलिफ नुकात जो हैं वो बयान किए जा सकते हैं, लेकिन मैं तेज़ी से एक नुक्ता फ़कत जो है उसको फ़ोकस करूँगा, और इस दुआ ने उसको फ़ोकस भी किया है। वो यही है, पहले भी मैंने जैसे इस जुमले को जो है वो पढ़ा है, इमाम सादिक़ अलैहि सलाम जो है वो फरमा रहे हैं कि इस तरीके से दुआ मांगी जाए कि अस्अलुका फ़ी हाज़ल यौम अल्लज़ी जअलतहू लिलमुस्लिमीन ईदा, कि मैं दुआ करता हूँ इस दिन में, सवाल करता हूँ तुझसे इस दिन में कि जिस दिन को तूने मुस्लिमीन के लिए ईद करार दिया है। अब इस जुमले को अगर हम दिक्कत से पढ़ें तो हमें एक चीज़ बहुत वाज़े और रोशन ये नज़र आती है कि ये ईद मुस्लिमीन की ईद है, यानी ये एक ऐसी मुनासबत है कि जो बैनुल अक़वामी है, और इसमें हमें जिस चीज़ की तरफ दावत दी जा रही है वो वहदत की दावत है। मुस्लिमीन की ताबीर इसमें आई है, अहले इस्लाम उसमें फिर मुख्तलिफ फ़िरके आ जाते हैं, चाहे वो शिया हों चाहे वो सुन्नी हों। आप देखें कि ये एक ऐसी मुनासबत है कि जिसको शिया सुन्नी अपने तमाम जो है वो इख्तलाफात के बावजूद जो हैं वो एक ही वक्त पे मनाते हैं, यानी जब ऐलान हो जाता है कि ईद हो चुकी है, चांद नज़र आ गया है, तो मसाजिद में जाकर ईद मनाते हैं, और जिस तरीके से हम ईद मनाते हैं वैसे वो भी ईद मना रहे होते हैं। इज्तिमाई तौर पर नमाज़ पढ़ते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, एक दूसरे को जो है वो रमज़ान की बरकतों को कस्ब करने की वजह से मुबारकबाद देते हैं आकर। तो दुश्मन ने आकर जो एक बाउंड्री खींची है शिया और सुन्नी के दरमियान और बास तासुबात पैदा कर दिए हैं, हमें वो तासुब दोबारा ख़त्म करने हैं। अब चंद साल पहले अगर चले जाएं, हमारे बुज़ुर्ग बताते हैं कि शिया सुन्नी के दरमियान कोई बड़ा इख्तलाफ नहीं होता था,
हत्ता नमाज़ें इकट्ठे पढ़ते,
एक ही मस्जिद में नमाज़ें पढ़ी जाती थीं, अगरचे नमाज़ें अलग अलग पढ़ते थे लेकिन एक ही मस्जिद में होती थी। रिश्ते जो हैं वो होते थे, मसलन लड़की अगर सुन्नी है लड़का शिया है, लड़का अगर सुन्नी है लड़की शिया है, ये तासुब ना होने की वजह से था कि ठीक है इख्तलाफ अपनी जगह, इख्तलाफ होने के बावजूद जब अमल में देखते हैं तो ये इकट्ठे रह रहे हैं। फिर एक दुश्मन ने आकर चाल चली और तासुब जो है वो ईजाद कर दिया आकर। तो हम मोमिनीन और मुस्लिमीन ने अमल के साथ तूले तारीख में बताया है कि इल्मी इख्तलाफ रहते हुए हम बेहतरीन ज़िंदगी गुजार सकते हैं, हमें वो दोबारा वक्त जो है वो वापस लेकर आना है, वो इस किस्म की मुनासबतों को मद्देनज़र रख कर है कि जब ईद आए तो उस ईद मिलने के अंदर किसी किस्म का कोई तासुब नहीं होना चाहिए। जिस तरह आप अपने रिश्तेदारों को मिलते हैं ईद जाकर, इसी तरह आप अपने पड़ोसियों से जाकर ईद मिल, चाहे वो पड़ोसी आपका सुन्नी हो, चाहे वो पड़ोसी आपका शिया हो, या किसी भी और मज़हब से जो है वो कत नज़र फ़िरका वारियत जाल, यानी कहा जा रहा है कि जाल तहू लिल मुस्लिमीना ईदा, मुस्लिमीन के लिए जो है वो ईद करार दी है। तो इसमें किसी किस्म की जो है वो तफरीक और जुदाई नहीं होनी चाहिए। यह दर्स बेहतरीन हमें इस दुआ कनूत से मिलता है।
माशाल्लाह, नहायत ही ममनून और मशकूर हैं कि आपने इस अहम मौजू को खूबसूरत अंदाज से बयान फरमाया, और ये बयान फरमाया कि ये खुदा की तरफ से इनाम और इकराम का दिन है। नाज़रीन मोहतरम, जैसा कि आपने देखा कि बुजुर्गवार ने ईद उल फितर की अहमियत और फजीलत पर बात करते हुए, अगर पूरी बात का ख़ुलासा किया जाए तो ईद उल फितर बैनुल अक़वामी और तअस्सुबात को ख़त्म करने का दिन है। चूँकि हमारा वक्त ख़त्म हुआ जाता है, अगले प्रोग्राम में नए मेहमान और नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।